कड़वा सच। वसुंधरा की ये हालात देखकर कहीं ना कहीं आस्था के बेचैन दिल को बहुत सुकून मिल रहा था। वहीं वसुंधरा तिरछी नजरों से अभिमान को देखने लगी, मानो जैसे कहना चाहती हूँ, बहुत खुश हो रहे हो ना तुम, जितना खुश होना है हो लो, लेकिन जब मेरा वक्त आएगा तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि वसुंधरा क्या चीज है और क्या नहीं। वहीं राधिका और रौनक जल्दी से आस्था के पास आकर चुपके से बोली, अरे वाह आस्था, तुमने तो बहुत अच्छा तरीका निकाला अपनी सासू माँ को तंग करने का। तुम इस दुनिया की पहली बहू होगी जो अपनी सास को इस तरह से अपनी उंगलियों पर नचा रही हो। उनकी इस बात पर आस्था मुस्कुरा देती हैं, मानो जैसे उसके दिल में सुकून सा घुल गया हो। फिलहाल तभी सीढ़ियों से अरमान सिंघानिया अपने पावरफुल तेवरों के साथ नीचे उतरते हुए नजर आए। अरमान को देखते ही सब लोग अलग थलग हो गए, क्योंकि कोई भी अरमान के सामने ज्यादा देर खड़ा नहीं रहना चाहता था। और अरमान ने भी उन्हें साफ साफ कह दिया था कि अगर ये सारी लड़कियां यहां रहना चाहती हैं तो वो उसके सामने ज्यादा नजर ना आए। और वैसे भी जब से अरमान ने राखी वाले दिन जो ड्रामा किया था, तब से सभी लड़कियां उससे कुछ खिंची खिंची सी रहती थीं और अरमान से बात करने से भी कतराती थीं। वहीं रौनक पहले से ही तैयार बैठी थी, क्योंकि दादाजी ने उसे बता दिया था कि अरमान के ऑफिस निकलने के बाद वे लोग अस्पताल जा सकते हैं। अब अरमान जैसे ही वहां आया, उसकी नज़र सीधी आस्था पर पड़ी। आस्था ने तुरंत ही उसकी ब्लैक कॉफ़ी उसके सामने रख दी। अरमान ने गहरी नज़रों से आस्था को देखना शुरू कर दिया। आज आस्था उसे कुछ उखड़ी उखड़ी सी नज़र आ रही थी और अरमान को अनदेखा कर रही थी, क्योंकि कल रात अरमान ने अंश के साथ जो किया था वही बात आस्था को अंदर तक डरा गई थी। अचानक आस्था का मन बेचैन हो गया। उसके मन में अभी ये बात चल रही थी, मुझे अरमान जी की यादें वापस लाने के लिए अपने बेटे को बलि का बकरा नहीं बनाना है। एक माँ होने के नाते मैं अपने बेटे को फिर कभी ऐसी सिचुएशन में अकेला नहीं छोड़ूंगी। फिलहाल तभी नानी माँ वहां आई और अंश के लिए बड़े प्यारे से कपड़े आस्था को देते हुए बोली, आस्था मैंने ये कपड़े अंश के लिए तैयार करवाए हैं, कल भगवान जी का जन्मदिन है तो तुम्हारे पास भी तो एक कान्हा है, देखना कल हमारा अंश कान्हा जी के कपड़ों में कितना प्यारा लगेगा। उसी वक्त ध्रुव वहां आया और उत्सुकता से बोला, अरे हाँ हाँ मैं तो बताना ही भूल गया था, मैंने अंश के लिए बांसुरी भी ला दी है, कान्हा के कपड़े पहनेगा तो बांसुरी के बिना अधूरा सा लगेगा ना। ये सुनकर आस्था अगले ही पल मुस्कुरा देती है, क्योंकि आज ध्रुव पहले की तरह नॉर्मली बर्ताव कर रहा था। अब सब लोग मिलकर अंश को घीर कर खड़े हो गए। अभिमान जी और दादाजी अंश को पुचकारते हुए बोले, कल हमारा नन्हा अंश कृष्णा बनकर और भी प्यारा लगेगा। इसी बीच डाइनिंग टेबल पर बैठे अरमान की नज़रें बार बार अंश पर जाकर ठहर जा रही थीं। वो ये देख रहा था कि किस तरह अंश को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। ये देखकर उसे अंदर ही अंदर इनसिक्योरिटी फील हो रही थी और वो नाखुश होकर सोचने लगा, ये लोग इस बच्चे को इतना अहमियत क्यों दे रहे हैं? जब इसका असली पिता यहाँ आएगा और इसे यहाँ से ले जाएगा तब क्या होगा? और मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये बच्चा अभी 5-6 महीने का है, अगर इसका पति जो इसे 2 साल पहले छोड़कर गया था तो फिर ये बच्चा किसका है? ये सोचते हुए अरमान के दिमाग में ये सवाल तेजी से चलने लगे, जरूर इसका कहीं और अफेयर रहा होगा और अब ये मेरी याददाश्त जाने का फायदा उठा रही है। इसका पति भी शायद इसी वजह से इसे छोड़कर भाग गया होगा, क्योंकि ये लड़की कैरेक्टरलेस है और ये बच्चा भी शायद इसके पति का नहीं है, इसलिए मुझे इस पर नजर रखनी होगी। अगर मैंने इसके बारे आकाश या सुमित से कुछ पूछताछ की तो पक्का वो दोनों इसकी ही साइड लेंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अरमान कॉफी पीते हुए यही सब सोच रहा था, फिर अचानक उसने दादाजी की ओर गंभीरता से देख के रोबदार आवाज में पूछा, दादाजी ये सब यहाँ क्या हो रहा है? किस त्यौहार की तैयारी हो रही है? आप जानते हैं ना सिंघानिया मेंशन में आज तक कोई भी त्यौहार सेलिब्रेट नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। अरमान का एटीट्यूड देखकर दादाजी ने उखड़े अंदाज में जवाब दिया, बेटा तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी यह फेस्टिवल सिंघानिया मेंशन में नहीं होगा बल्कि कहीं और होगा, तो तू अपने दिमाग पर इतना जोर मत दे। इतना कहकर दादाजी मुंह फेर कर खड़े हो गए। दादाजी की बेरुखी देखकर अरमान एक पल के लिए खींच गया, फिर वो झल्ला कर सोचने लगा, सब लोग मुझसे अब अनमने ढंग से बातें करते हैं, यहाँ तो सबके तौर तरीके एकदम बदल गए हैं, ये सब उस आस्था की वजह से हो रहा है, लेकिन मैं इस एंग्री बर्ड को ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं टिकने दूंगा। इस लड़की की सच्चाई बहुत जल्दी मैं सब घर वालों के सामने लेकर आऊंगा और फिर सब इसे घर से खुद ही धक्के मारकर निकाल फेंकेंगे। आस्था के जाने के बाद सिर्फ नानी माँ और उनकी बेटियां ही बचेंगी, बस एक बार इनकी बेटी मेरा एंटीडोट बना दे उसके बाद मैं इन्हें भी निकाल बाहर कर दूंगा। फिर अरमान अचानक खड़ा हुआ और तेज आवाज में चिल्लाया, टाइगर चलो हमें लेट हो रहा है। ठीक उसी वक्त पलक झपकते ही टाइगर वहां आकर जिन्न की तरह खड़ा हो गया। अब जैसे ही अरमान टाइगर के साथ जाने लगा, आस्था तुरंत उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसे अपने सामने देखकर अरमान का चेहरा तमतमाया। अरमान भड़कते हुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आकर खड़े होने की? उसकी तेज आवाज सुनकर अब्बा के सब भी अंश को छोड़कर उनकी ओर देखने लगे। ठीक उसी वक्त सबके सब वहीं आकर खड़े हो गए। वहीं आस्था अपने हाथ बांधकर बेपरवाही से खड़ी हो गई और वो टाइगर को देखकर शांत स्वर में बोली, टाइगर भैया, आज आप मिस्टर सिंघानिया के साथ कहीं नहीं जाएंगे। अब जैसे ही आस्था ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा, वैसे ही अरमान के माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं और वो भड़क गया। अरमान रूखेपन से, तुम होती कौन हो इस तरह से मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड को ऑर्डर देने वाली? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ बोलो, जवाब दो। अरमान पूरी तरह से गुस्से में तमतमाया हुआ था, क्योंकि इस घर में अगर किसी को ऑर्डर देने की आदत थी तो वो सिर्फ अरमान सिंघानिया को। दादाजी को छोड़कर उसे किसी और का इस तरह ऑर्डर देना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। वहीं टाइगर ने थोड़ी झिझक के साथ पूछा, टाइगर आस्था से, आप कहना क्या चाहती हैं आस्था? आस्था ने सीधे उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया। आस्था बेपरवाही से, शायद आप भूल रहे हैं कि आप एक पिता बनने वाले हैं और आपको कोई हक नहीं है अपनी पत्नी का ये वक्त मिस्टर सिंघानिया को देने का, और इस कंडीशन में मारिया दीदी को आपकी सख्त जरूरत है टाइगर भैया, इसलिए आप इस तरह से मिस्टर सिंघानिया के साथ कहीं नहीं जा सकते। और वैसे भी शायद आपको इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन मारिया दीदी की तबीयत पिछले 3 दिनों से खराब है, इसलिए आज आप उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। आस्था की बात सुनकर टाइगर अगले ही पल बेचैन हो गया, क्योंकि मारिया ने उसे अपनी तबीयत के बारे में कुछ नहीं बताया था। लेकिन आस्था जो नाश्ता देने के लिए उसके कमरे में गई थी, उसने मारिया के चेहरे को नोटिस कर लिया था और वो समझ चुकी थी कि जरूर उसे कोई ना कोई परेशानी है, लेकिन वो किसी से कह नहीं पा रही। आस्था की बातें सुनकर अरमान एक पल के लिए परेशान हो गया, लेकिन तुरंत अपने होश संभालते हुए उसने आस्था को पूछा, अरमान बेपरवाही से, तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि टाइगर और मारिया एक दूसरे से अलग होने वाले हैं, वे दोनों एक दूसरे को डिवोर्स देने वाले हैं, तो टाइगर को मारिया के साथ प्यार का दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। और मारिया कोई कमजोर औरत नहीं है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो बहुत बहादुर है और वो कभी शादी प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती। अरमान की बात सुनकर आस्था का गुस्सा और बढ़ गया। फिलहाल वो अरमान की आंखों में देखते हुए डटकर खड़ी रही और दृढ़ आवाज में बोली, आस्था बेमन से,
मिस्टर सिंघानिया, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप मारिया दीदी और टाइगर भैया को अलग कर सकते हैं, लेकिन उनके बच्चे का क्या? अगर उनका बच्चा पिता के बिना पैदा हुआ तो क्या उसे पिता की कमी कभी महसूस नहीं होगी? और अगर मारिया दीदी इस हालत में आपकी बॉडीगार्ड बनी रही और उन्हें कुछ हो गया तो उनके बच्चे का क्या होगा? उस बच्चे पर कितना बुरा असर पड़ेगा? क्या आपने कभी इस बारे सोचा है? आस्था की बातें सीधे अरमान के दिल पर चोट कर गईं। उसके दिमाग में अचानक पुरानी बातें और मेंटल हॉस्पिटल के पल ताज़ा हो गए। ये बात याद आते ही अरमान का दिल भारी हो गया और वो अंदर से टूटने लगा। लेकिन आस्था को टाइगर और मारिया का रिश्ता बचाने के लिए मन मारकर ये कड़वे शब्द कहने पड़े। आस्था ने फिर बात आगे बढ़ाते हुए कहा, देखिए मिस्टर सिंघानिया, आपने उनकी ज़िंदगी का फ़ैसला एक मिनट में कर दिया। जब आपका दिल किया आपने उनके शादी करवाई, और अब आपका दिल कर रहा है कि वे अलग हो जाएं, तो अब आप उनका डिवोर्स करवा रहे हैं। आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मिस्टर सिंघानिया? क्या आपने कभी टाइगर भैया से पूछा कि वे डिवोर्स लेना चाहते हैं या नहीं? अगर वे दोनों खुश नहीं होते तो क्या उनकी ज़िंदगी इस मुकाम तक पहुँचती? उनका बच्चा इस दुनिया में कैसे आने वाला होता? आस्था की बातें सुनकर अरमान पूरी तरह निरुत्तर हो गया। उसकी ज़ुबान साथ नहीं दे रही थी। उसने एक नज़र टाइगर की ओर गंभीरता से देखा और उसे घूरते हुए बोला, पहले मारिया को डॉक्टर के पास लेकर जाओ। इतना कहकर उसने आस्था पर एक गुस्साही नज़र डाली और लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ वहां से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद सभी लोग चिंतित होकर आस्था के पास आकर खड़े हो गए। नानी माँ, चिंता भरे स्वर में हल्की नाराज़गी से, बेटा तूने ये क्या किया? तुझे इस तरह से दामाद जी से बहस नहीं करनी चाहिए थी। अगर उन्होंने गहराई से सोच लिया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। आस्था ने गहरी सांस लेकर अगले ही पल खुद के इमोशंस को नॉर्मल किया, फिर कॉन्फिडेंस से बोली, आप लोग परेशान मत होइए, मैंने सिर्फ उतना ही कहा है जितना वे बर्दाश्त कर सकते हैं। वही कमरे में मौजूद मारिया ये सब बातें सुन चुकी थी। वो आहिस्ता से दौड़कर आस्था को गले से लगा लेती है। टाइगर, जो अब तक परेशान खड़ा था, अचानक वो घुटनों के बल बैठ गया और अपने कान पकड़ते हुए माफ़ी मांगने लगा। टाइगर मारिया से, आई एम सॉरी मारिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मारिया ने बिना कुछ कहे उसे गले से लगा लिया, फिर दोनों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगे। बाकी सबने तालियां बजानी शुरू कर दी। ध्रुव ने नारा लगाया, हिप हिप हुर्रे। सभी लोग खुश होकर मुस्कुराने लगे कि कम से कम इन सब झगड़ों के बीच एक मामला तो सुलझ गया। वहीं आहान रौनक को प्यार से देखकर नर्म आवाज में कहता है, चलो कार तैयार है, मैं तुम्हें लेकर हॉस्पिटल चलता हूँ। ये कहकर वो तुरंत रौनक को संभालते हुए बाहर की तरफ जाने लगा, लेकिन आस्था ने अगले ही पलों से रोक दिया। आस्था, अपनी आईब्रो को मटकाते हुए, आप रौनक को यहाँ से तो लेकर जा रहे हैं, लेकिन उसे हॉस्पिटल से सीधा आपको शॉपिंग भी करवाने लेकर जाना होगा, क्योंकि कल हम सब एक साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करेंगे और हम कल व्रत भी रखेंगे। लेकिन रश्मि दीदी और रौनक को मैंने मना कर दिया था, क्योंकि प्रेगनेंसी में व्रत रखना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप रौनक को साड़ी जरूर दिलाकर लेकर आएंगे, क्योंकि हमने डिसाइड किया है कि हम सब लेडीज एक जैसी साड़ियाँ पहनेंगे। आहान आस्था की बात सुनते ही खुशी से उछल पड़ता है। आहान एक्साइटेड होकर, भादी थैंक यू सो मच, आप तो जानती हो ना मैं कब से अपनी हवा हवाई को साड़ी में देखना चाहता हूँ, और वैसे भी उसके ढीले ढाले बनियान देखकर मैं पक चुका हूँ, साड़ी में तो मेरी हवा हवाई बहुत प्यारी लगेगी। अब जैसे ही आहान बिना किसी की परवाह किए इस तरह से रौनक के लिए प्यार जताया तो वैसे ही सब उसकी इस बात पर हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। आहान ने अपनी बात को समझाते हुए रौनक को लेकर बाहर का रास्ता पकड़ लेता है। जल्दी ही रौनक और आहान हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वहीं अब आस्था सीधा राधिका और वंशिका के सामने जाकर खड़ी हो गई। फिर उसने सुमित और ध्रुव को सवालिया नजरों से घूरा। आस्था आईब्रोज काते हुए, आप लोगों को क्या मुझे अलग से कहना पड़ेगा, जाइए और जाकर इन्हें इनके मनपसंद कपड़े दिलाकर लाइए, और ये भी साड़ियां ही पहनेंगी, ठीक है, और एक दूसरे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए क्योंकि आज दोपहर का लंच हम घर पर नहीं बना रहे हैं। आस्था के मुंह से ये शब्द सुनकर वंशिका और रश्मि दोनों मुस्कुरा दी, लेकिन राधिका का मूड कुछ खास नहीं था। वो सुमित के साथ जाने को लेकर आनाकानी करने लगी। राधिका साफ मना करते हुए, नहीं नहीं मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मेरे पास ऑलरेडी कई सारी साड़ियां पड़ी हुई हैं, मैं उनमें से ही कुछ पहन लूंगी, और तुम मेरे लिए जो इतने प्यारे झुमके लेकर आई हो मैं वही झुमके पहन लूंगी।